Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svapnantam Jagari Tantam Chobho Enanu Pashyati महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति शोकं तरति आत्मवित्। श्रुति कहती है आत्मा को जानने के बाद ज्ञानी संपूर्ण शोकों से पार हो जाता है। अनात्म ज्ञान हमें शोक में ले जाता है। आत्म भिन्न पुत्र दारा गृह बाह्य वस्तुएं इनका हम संकलन करते हैं और संकलन के बाद संपूर्ण चेतना इनकी सुरक्षा में लगाते हैं। पहले इन बाहर के पदार्थों को पाने के लिए श्रम और पाने के बाद उनकी सुरक्षा का श्रम, इसी को तो योगक्षेम कहते हैं। अप्राप्तस्य प्राप्तिर योगः, प्राप्तस्य परिपालनम क्षेमः। पहले नहीं है उसको प्राप्त करने का परिश्रम करो और प्राप्त होने के बाद इनकी सुरक्षा। इन सारी चीजों के संदर्भ में एक सत्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हम एकत्रित करते हैं, संकलित करते हैं, सुरक्षा करते हैं और धीरे धीरे हमारे मन में उनकी आसक्तियां पैदा हो जाती है। यदि आसक्तियां न हो तो बहुत अच्छी बात है। आसक्तियां न हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुविधा है ये। लेकिन हम केवल सुविधा तक सीमित नहीं रहते, वो चीजें हमारे मन में बैठ जाती हैं और वो ऐसी बैठती हैं कि आप कितना भी चाहो इसको निकालो तो निकल नहीं पाती है। सबसे बड़ा जो दुख है शोक, यही तो है। शोक का मतलब है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सोच रहे हैं ये शोक नहीं है, आप सोच रहे हैं, सोचना आपके नियंत्रण में है तो वो शोक नहीं है। ऐसा सोच जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आप नहीं सोचना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं, आप दुखी नहीं होना चाहते हैं लेकिन दुखी हो रहे हैं, माने आपके विचार आपकी भावना आपके नियंत्रण के बाहर है, उसी को शोक बोलते हैं। आप विचार कर रहे हैं जब चाहे तब सो गए, जब चाहे तब जग गए, चाहा सोचा और नहीं चाहा तो नहीं सोचा, तो ये बात शोक नहीं है और ये ज्यादा दुखद भी नहीं है। एक बार मैं हरिद्वार में था, पढ़ता था, सप्त सरोवर में एक आश्रम है गीता कुटीर, वहां महात्माओं को भोजन देते हैं 5 बजे शाम को। बहुत सारे महात्मा आते हैं, 100, 200, 300, 500 जितने साधु आए सबको भोजन मिलता है। और 5 बजे जैसी घंटी बजती हम लोग चले जाते, दूसरी पंक्ति में जाते, कभी तीसरे पंक्ति में चौथी पंक्ति होती नहीं थी, वहां दो पंक्ति में साधु करते थे, तीसरे पंक्ति में जो गरीब लोग हैं वो करते हैं, चौथी पंक्ति में फिर वहां के आश्रम के विद्यार्थी वगैरह खाते। इसलिए सब महात्मा सोचते थे कि पहले पंक्ति में जाए हम, और बड़ी भीड़ हो जाती थी। कई बार तो अंदर प्रवेश करने के लिए हम लोग आगे पीछे हो जाते थे। एक पंजाब के कोई महात्मा जी आए थे आश्रम में, ऐसे बातचीत जब होने लगी तो उन्होंने एक बहुत मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा कि भैया मैं शोक नहीं करता हूं, बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूं, और मैं अपने में मस्त रहता हूं। ये सारी दुनिया की चीजें हैं, इसके बारे में क्या शोक करना है। उन्होंने ये भी बोला कि मैं जब चाहे तब सो सकता हूं, जब चाहे तब मैं सो सकता हूं, जब चाहे तब मैं जग सकता हूं। तो आजकल के आदमी को ये विश्वास करना ही बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल के आदमी की न नींद अपने हाथ में रही और न जागृति अपने हाथ में रही। अर्जुन को कहा जाता है वो गुड़ाकेश थे, गुड़ाकेश माने उनकी नींद उनके हाथों में थी, वो जब चाहे तब सो सकते थे और जब चाहे तब जग सकते थे। जिसकी इंद्रियां अपने वश में होती हैं, उसकी जागृति अपने वश में होती है, और जिसकी जागृति अपने वश में होती है उसकी नींद भी अपने वश में होती है। यदि जागृति पर नियंत्रण नहीं है, जागृति के इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं, तो हमारे नींद पर नियंत्रण कैसे होगा। जब जागृति हमारी बिगड़ जाती है तो नींद भी बिगड़ जाती है। हमारा जागना सुव्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त है, भावना में बह रहे हैं, विचारों में बह रहे हैं। अब आप कितना भी सोने की कोशिश करेंगे आपको नींद ही नहीं आएगी, जागृति के विचारों का प्रवाह आपके नींद को बहा ले जाएगा। महात्मा जी को मैंने कहा कि आप जब चाहे तब सो सकते हैं, आप सो के दिखाइए। और उस समय करीब 5 बजने का समय था, वो 5 बजने का समय बड़ा टेंशन का समय था, क्योंकि 5 बजे भोजन की घंटी बज जाती थी, और पहले पंक्ति में जाने का भी तनाव बना रहता था, पहले पंक्ति में जाना है। अब उस समय सोने का सवाल ही नहीं। मान लो कि आपको ट्रेन से जाना है और ट्रेन आने का समय हो जाए, उस समय आपको नींद आएगी क्या? आप कोशिश करोगे तो भी उस समय नींद ना आए। हाँ, हो सकता है पहले ही आप सो गए हो, लेकिन उस समय सोना बहुत मुश्किल है। हमने कहा आप इस समय सो जाएं, अभी 5 मिनट बाकी हैं 5 बजने में, अभी घंटी बजने वाली है। मैंने थोड़ा तनाव भी पैदा किया, मैंने कहा अभी तो घंटी बजने वाली है, बाहर के साधु थे वो। हमने कहा पहले घंटी में जाना जरूरी है, दूसरे घंटी में भोजन मिले कि ना मिले। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी सो जाता हूं। आश्चर्य की बात, आंख बंद किए हो और आंख बंद करके मुश्किल से एक 25-30 सेकेंड भी नहीं हुए होंगे वो सो गए, और उनकी नाक बजने लगी। मैं आश्चर्यचकित हो गया, और जैसे 5 बजे घंटी लगी और इधर उनकी आंख खुल गई, बोले ब्रह्मचारी घंटी लग गई क्या? मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। कई बार मैंने देखा वो जब चाहे तब सो जाते थे और जब चाहे तब जग जाते थे, माने उन्हें नींद की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं थी, सोना है बस सोना है, और जगना है तो जगना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिनका अपने विचारों पर नियंत्रण है, क्योंकि विचारों के नियंत्रण के बिना नींद का आना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां अज्ञात हैं, वो अवस्था ही अज्ञात है। आप जब चले जाते हैं नींद में तो वहां कुछ पता नहीं चलता है, वहां न कोई विचार होते हैं और न कोई भावना, सारी चीजें अज्ञात में चली जाती हैं। इन बाहर के पदार्थ हमें शोक में ले जाते हैं, यही तो शोक है, हमारे सोच पर नियंत्रण नहीं है, हमारी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, और ये सबसे बड़ी अशांति है, सबसे बड़ा दुख है। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद व्यक्ति शोक नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है दुनिया में शोक करने योग्य क्या चीज है। भगवान ने भी बोला, आगमा पायनो नित्या स्तान तितिक्षस्व भारत अशोचानन वशोचस्व प्रज्ञावादांच भाषशे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। वास्तविक यदि संसार का बोध हो जाए, सामान्य यथार्थ का बोध हो जाए, आत्मज्ञान की तो बात छोड़ दीजिए, सामान्य बोध हो व्यक्ति को तो भी व्यक्ति के शोक समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारी अवस्थाएं हैं, पहले बच्चे थे, फिर जवान हो गए, जवान होने के बाद बूढ़े, और बूढ़े होने के बाद मर जाते हैं, और ये बहुत सामान्य बात है। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है, एक समझदार व्यक्ति भी जानता है, और एक नासमझ व्यक्ति भी जानता है। जातस्य जो भी वस्तु जात है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, और जिसकी मृत्यु अनिवार्य है उसका पुनर्जन्म भी अनिवार्य है, और ये शाश्वत सत्य है। और एक बार यदि हमने जाना है इस बात को, इस परिवर्तन के सत्य को, तो आदमी शोक ही नहीं करेगा, उसको मालूम है, आया है तो उसको जाना है। या इस हॉल में आप आए हैं, अब आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर आप कितने दिन तक चिपके बैठोगे, आप कितने समय के लिए बैठोगे। और एक मैं एक आश्चर्य की बात देखता हूं, यहां जो भी व्यक्ति आता है उसकी अपनी कुर्सी निश्चित है। आप वहीं आके बैठ जाते हैं, यहां बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, लेकिन आप दूसरी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठते हैं। हमारे ब्रह्मचारी जी रामनाथ जी जब भी आते हैं तो उनकी निश्चित वहीं जगह है, न वो इधर जाते हैं न उधर जाते हैं। बात क्या है, हमारा जो मन है ना उस देश को पकड़ लेता है, जहां पर एक बार बैठते हैं, एक बार बैठने मात्र से ही आपका मन उस जगह को, देश को, उस एंगल को पकड़ लेता है। आज जब दूसरे दिन आते हैं तो वहीं बैठेंगे आप, लेकिन आप कब तक के लिए, जैसे समय पूरा हो जाता है तो आप बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं उस समय थोड़ा कुर्सी को धन्यवाद देते हैं क्या? आपकी कुर्सी के प्रति कोई आसक्ति होती है क्या? मेरे को नहीं लगता है, एक घंटा तक जिस कुर्सी पर बैठे और घर में जाने के बाद वो कुर्सी याद आती होगी, नहीं आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है केवल एक घंटे के लिए, और बीच में कोई आके बोले कि इस कुर्सी को छोड़ दो तो आप छोड़ोगे? मुश्किल है। आप जिस जगह में बैठे हैं और उसी समय आके कोई बोले कि आप ये जगह छोड़ दीजिए हमारे लिए, तो आप क्या बोलोगे? भैया दूसरी कुर्सी तो है ना, आप नहीं छोड़ोगे। हो सकता है झगड़ा भी कर ले, हो सकता है कि कुर्सी के लिए झगड़ा भी कर दे आप, लेकिन समय जैसे पूरा हो जाता है उसके बाद यूं आप फोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आपको बोध है, आपको मालूम है, आपको पता है कि ये कुर्सी जो है केवल प्रवचन के लिए है। आज जैसे प्रवचन पूरा हो जाता है उसको छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, अनिवार्य छोड़ना पड़ता है। बात तो केवल इतनी जानने की है और कुछ नहीं है। यदि आप पैदा हुए हैं तो परिवर्तन संभव है। सबसे पहला जो इस शरीर का विकार है जायते, ये पैदा हुआ और पैदा होने के बाद फिर इसमें अस्थिता आ गई। ये शरीर है क्यों है? क्योंकि पैदा हुआ इसीलिए है। यदि पैदा हुआ न होता तो ये शरीर नहीं होता। ये पैदा होने का परिणाम है और जो वस्तु पैदा हुई वैसे की वैसे नहीं रहती है। पैदा हुई वस्तु में यदि कोई परिणाम ना हो, कोई बदलाव ना हो, तो आप परेशान हो जाएंगे। मान लो बच्चा पैदा हुआ, जितना पैदा हुआ उतना ही बना रहे, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए बार बार आप देखते हैं ये बढ़ रहा है कि नहीं, और उसके बढ़ने से आप प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ने से आदमी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अस्थि के बाद, जायते के बाद अस्थिता, और अस्थिता के बाद फिर वर्धते, वो बढ़ता है। ये अनिवार्य शाश्वत सत्य है। जो पैदा हुआ वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा धीरे धीरे चरम, उसके बढ़ने की एक सीमा है, एक बढ़ने की एक सीमा है, और उस सीमा के बाद उसका बढ़ना बंद हो जाता है। एक छोटा सा पेड़ आप जमीन में लगा दीजिए और वो अंकुरित होकर बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। चने का पौधा है मान लीजिए, अब वो चने का पौधा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, उसकी सीमा है। एक फुट बहुत हो गया, डेढ़ फुट, अरे ज्यादा ज्यादा मान लो दो फुट। आपने कभी पांच फुट बड़ा चने का पौधा देखा? उसकी सीमा ही नहीं है, उतनी बढ़ने की उसकी सीमा ही नहीं है। आप बहुत बड़ा से बड़ा पेड़ देखेंगे, पीपल का, बरगद का, ताड़ का, लेकिन आप इतना बड़ा पेड़ नहीं देख पाएंगे जिसकी शाखाएं आपको मालूम ही न पड़े, अंतरिक्ष में हो। उसकी सीमा है, एक बढ़ने की सीमा, और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। उसकी बढ़ने की एक सीमा है, युवावस्था की एक सीमा है, कहां तक हम युवा हो सकते हैं। और जैसे वहां सीमा तक पहुंच जाती चीज, और उसके बाद फिर लौटना शुरू हो जाती है, वह अपक्षीय थे। एक सीमा आपने जान लिया कि इसकी एक सीमा है, एक बढ़ने की सीमा, युवावस्था की सीमा है, और उसके बाद फिर लौटना शुरू हो जाती चीज अपने मूल रूप में। हम जहां से यात्रा शुरू कर देते हैं पुनः लौटना शुरू कर देते हैं, कितनी आश्चर्य की बात। बाल्यकाल में बच्चे के मुख में दांत नहीं होते हैं, और मरते समय भी दांत नहीं होते हैं, बीच में है। ये प्रकृति का नियोजन है। जब बच्चा है, पेट कमजोर है, अन्न पचा नहीं सकता, ये दूध के दांत हैं। दूध के दांत का मतलब है केवल अभी दूध पीने वाला है। और जैसे ही उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो जाती है, धीरे धीरे दूध के दांत गिर जाते हैं, दूसरे दांत आ जाते हैं, क्योंकि चना जैसी कठोर चीजें पचाने का सामर्थ्य उसके पेट में आ गया है। इसलिए प्रकृति ने दांत दिए उसको। लेकिन जैसे जैसे अपक्षीयते की अवस्था शुरू हो जाती है, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये पेट कमजोर होने लगता है, कठोर चीजें पचाने में समर्थ नहीं रहता, उस समय धीरे धीरे प्रकृति दांत निकाल लेती है और आपको संकेत करती कि बहुत ज्यादा हैवी खाने की जरूरत नहीं है। जहां से यात्रा आपने शुरुआत की प्रकृति ने आपको वहां पहुंचा दिया। आंखों से बहुत दूर की चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे आंखें कमजोर हो जाती हैं, कान कमजोर हो जाते हैं, नारायण शरीर के अंग उपांग सारे शिथिल होने लगते, ढीले होने लगते। ये लौट रहे हैं, हम जहां से यात्रा शुरू की हम वहां लौट रहे हैं, और ये लौटना अनिवार्य शाश्वत सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा अपरिहार्य थे न त्वम शोचि तुम्हारा, आत्मा के बारे में कोई शोक नहीं है, आप आत्मा हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं है, आप सच्चिदानंद घन, आत्मा में कोई अवस्थाएं नहीं है, वो अवस्थाओं का साक्षी है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, आप देख रहे थे ये शरीर पैदा हुआ, देख रहे थे शरीर ये बच्चा है, देख रहे थे शरीर ये युवा हो गया, और आप देख रहे हैं शरीर बूढ़ा हो गया, इन अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है, और उसमें ये अवस्थाएं नहीं है। आप देख रहे थे हम जवान, हाँ देख रहे थे हम बूढ़े, लेकिन कौन था जो बच्चा था? प्रतीति होती है, जो मैं मेरे दादा के गोद में बैठा था वही मैं अपने बच्चों को अपने गोद में बैठाकर खिला रहा हूं, माने जो मैं बच्चा था आज मैं वही वृद्ध हूं। तो जो बच्चा था बाल्य अवस्था थी वो चली गई, अभी नहीं है, आज तो युवावस्था है, और युवावस्था भी चली गई, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन आप तो है, बच्चे थे तब भी आप थे, शरीर जवान था तब भी आप थे, और ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया तब भी आप हैं। इसका मतलब आपका होना निरंतर है, आपका होना निरंतर है, और ये शरीर का होना निरंतर नहीं है, ये शरीर का होना खंडित है, पहले बच्चा था फिर जवान हो गया, फिर जवान था बूढ़ा हो गया, लेकिन आपका होना निरंतर है। आप बोलते हैं ना भैया हम तो 50 साल से मुंबई में, बहुत सारे मकान बने बिगड़ भी गए, बहुत सारे रोड बने टूटे फूटे हमने देखा है, हमने दूर से देखा है, ऐसे ही शरीर की अवस्थाओं के हम दृष्टा है, हम देख लेते हैं, ये शरीर पैदा हुआ, शरीर युवा हो गया, शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। आत्मा के दृष्टि से कोई शोक नहीं है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, और शरीर के दृष्टि से भी कोई शोक नहीं, भगवान ने कहा अपरिहार्य है ये चीजें, अपरिहार्य हैं। कितनी आश्चर्य की बात, कितनी आश्चर्य की बात, आदमी दुखी होता है, अपने बालों को सफेद होते हुए देख के बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए कई बार छिपाने की कोशिश करता है उन सफेद बालों को, बहुत सारी दवाएं करने की कोशिश करता है, उसको ऐसा लगता है कि हम वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ये लौटने की सूचना है, लौटने का दुख है, अपने को लगता है कि हम लौट रहे हैं, जैसे जन्म से निकले और हम लौट रहे हैं, किधर लौट रहे हैं? आपको मालूम है जन्म से आए हैं और आपको जन्म में जाना है। अभी हम लोग बद्रीनारायण में भागवती कथा कर रहे थे, बहुत आनंदपूर्ण कथा थी, और जैसे जैसे समय पूरा होता गया और अंतिम दिन आया, ओहो हमको बड़ा दुख हो रहा था, अरे छोड़ के जाना है अभी, इतना सुंदर धाम बद्रीनाथ, उसको छोड़ के जाना है, और जहां से आए वहां जाना है, हम जन्म से आए हैं और जैसे बाल सफेद होने लगते हैं आदमी को दुख होने लगता है क्योंकि लौटने की सूचना है, और लौटने की सूचना जन्म में जाना है और मरे बिना जन्म लेने का कोई उपाय नहीं है, पुनर्जन्म लेना है, लेकिन पुनर्जन्म पाने के लिए मरना बहुत जरूरी है। आप अक्सर बोलते हो ना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, बात सत्य है। आपको स्वर्ग भी जाना है तो मरना अवश्य जरूरी है। हम मरना भी नहीं चाहते हैं और चाहते कि हमें स्वर्ग मिल जाए, कैसे संभव है? ये अपरिहार्य है, अपरिहार्य, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भगवान कहते अपरिहार्य थे न त्वम शोचितुमर्हसि, जो वस्तु अपरिहार्य है जिसको हम मिटा नहीं सकते हैं। हम थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। स्वर्ग में देवता लोग अमृत का पान करते हैं तो क्या अमर हो जाते हैं? खोजा, लोगों ने खोजा, उपाय खोजा, अमर होने का उपाय खोजा, अमृत खोजा। और आप जो बहुत लंबी लंबी दवाएं खाते हैं ना, ये भी अमृत से क्या कम है? आप इन दवाओं को खाते हैं तो लंबे जीते कि नहीं? ये अमृत क्या है? ये अमृत सापेक्षित है। इंद्रादि देवता अमृत का पान करके यदि अमर हो गए होते तो भगवान ने कभी बात नहीं कहते क्षीणे पुण्य मर्त लोका विशंति। पुण्यक्षय होने के बाद इंद्रादि देवताओं को भी मरना पड़ता है,